हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिवांशा शादी करके चौहान पैलेस आ चुकी थी। वेद के परिवार में सभी उसका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने बिना कोई सवाल किए शिवांशा को स्वीकार कर लिया था। उसका पूरे रीति रिवाजों के साथ गृह प्रवेश भी करवाया गया। हालांकि वेद की बेरुखी उन सबके मन में कई सवाल पैदा कर रही थी, फिर भी उन्हें ये भी पता था कि वेद न तो किसी बात पर ओवर एक्साइटमेंट दिखाता था, न ही ज्यादा एक्सप्रेसिव था जो अपने दिल की बात मुंह से बोलकर बता सके। वेद ने कुछ जरूरी रस्में निभाईं और फिर थकान का बहाना बनाकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद बाकी परिवार वालों ने शिवांशा से कुछ देर बात की। वो काफी घबराई हुई थी, इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर आराध्या, अक्षत और नव्यांशी ने उसे जबरदस्ती वेद के कमरे में धकेल दिया। वेद अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था और शर्टलेस था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से पलटा तो सामने शिवांशा खड़ी थी। फिट होने की वजह से वेद अपनी उम्र से काफ़ी छोटा दिखता था। उसके सिक्स पैक एब्स साफ नज़र आ रहे थे। उसे शर्टलेस देखकर शिवांशा ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। क्या कर रही हो तुम यहाँ? वेद ने उसे घूरते हुए पूछा और जल्दी से पास रखी शर्ट उठाकर पहनने लगा। वो उन्होंने, शिवांशा डरते हुए हकलाने लगी। वो ठीक से अपनी बात भी पूरी नहीं कर पा रही थी। तुम स्टैमरिंग करती हो? वेद ने उसकी तरफ देखकर पूछा। शिवांशा ने नजरें उठाकर वेद की ओर देखा और ना में सिर हिला दिया। उसके मना करने पर वेद ने आंखें घुमाकर कहा, तो जो कहना है सीधे सीधे कहो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ही इरिटेशन हो रही है। ऊपर से तुम बात करते वक्त और भी इरिटेट करती हो। मैं इस कमरे में खुद नहीं आई थी, उन सब ने मुझे अंदर भेजा था, शिवांशा ने जैसे तैसे अपनी बात पूरी की। शिवांशा दिखने में कितनी भी मासूम क्यों ना हो, वेद ये कभी नहीं भूल सकता था कि देवराज ठाकुर ने उसे अनाथ कर दिया था। शिवांशा की वजह से ही वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसे एक ऐसी लड़की को सबके सामने अपनी पत्नी बताना पड़ रहा था जिससे वो बेइंतहा नफरत करता था। ऊपर से शिवांशा की वजह से उसे अपनी पूरी फैमिली से झूठ बोलना पड़ रहा था। वेद ने गहरी सांस ली और कहा, कमरे तक तो आ गई हो, आगे कोई उम्मीद मत रखना। वो इतने प्यार से पेश आ रहे हैं क्योंकि मेरे भाई बहनों के सामने तुम्हारा असली चेहरा नहीं आया है। अपनी औकात मत भूलना, वक्त आने पर तुम्हारी जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगा। शिवांशा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र बेड की तरफ गई तो उसके चेहरे पर फिर से घबराहट के भाव उभर आए। वेद ने उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए बेड की ओर देखा। कमरे में आते ही वो सीधे बाथरूम चला गया था, इसलिए उसका ध्यान बेड की तरफ नहीं गया था। नव्यांशी जानती थी कि वेद को ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, इसलिए उसने सब कुछ काफी सादा रखवाया था। फिर भी कमरे को फर्स्ट वेडिंग नाइट के हिसाब से थोड़ा बहुत डेकोरेट किया हुआ था। वेद ने शिवांशा की तरफ देखकर कहा, तुम डर क्यों रही हो? पहली बात, हमारी शादी नहीं हुई है। दूसरी बात, अगर गलती से शादी हो भी जाती तो भी मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता। कमरे का कोई कोना पकड़ लो और सो जाओ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट चाहिए, डिस्टर्ब मत करना। शिवांशा ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, वहीं खड़ी खड़ी वो कमरे को चारों तरफ देखने लगी। ये पैलेस काफी पुराना था, लेकिन उसका इंटीरियर और बाकी चीजों को बदलकर मॉडर्न कर दिया गया था। वेद के कमरे का इंटीरियर विंटेज स्टाइल में सेट किया गया था। लगभग 10 मिनट बाद शिवांशा को लगा कि वेद को नींद आ गई होगी, क्योंकि वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। उसके पायलों की खनक सुनकर वेद इरिटेट होकर उठ बैठा और एज आवाज में चिल्लाया, मैंने कहा ना, मुझे अपने कमरे में बिल्कुल साइलेंस चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। मैं पायल खोल देती हूँ, शिवांशा ने धीरे से जवाब दिया और वहीं जमीन पर बैठकर अपने पैरों से पायल उतारने लगी। वेद वापस बिस्तर पर लेट गया। पायल उतारने के बाद शिवांशा आगे बढ़ी और बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी चूड़ियों की खनखनाहट ने फिर से वेद की नींद डिस्टर्ब कर दी। वेद ने इरिटेट होकर गहरी सांस ली। इससे पहले कि वो फिर से चिल्लाता, शिवांशा ने जल्दी जल्दी अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू कर दी थी। वो जल्दी से बाथरूम में दौड़कर चली गई। उसने खुद को आईने में देखा। रोने की वजह से उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं। फिर उसकी नज़र अपने माथे पर गई, जहां सिंदूर लगा हुआ था। वो सिंदूर वेद के नाम का था, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। अचानक शिवांशा की आंखों में फिर से आंसू छलक आए। क्या मुझे हमेशा गुलामों की तरह जिंदगी बितानी पड़ेगी? पहले राजावत फैमिली में मुश्किल से अरमान भाई ने मुझे वहां से निकाला था। कुछ ही साल ठीक से बीते थे कि अब मैं यहां आ गई। इन्हें तो मेरे कदमों की आहट तक से दिक्कत है, फिर मैं यहां कैसे रहूंगी? मन तो कह रहा है कि जाकर कह दूं कि बाद में मारने से बेहतर है अभी मार दो, बस मेरे जाने के बाद मेरे भाई रोहन का ख्याल रखना, शिवांशा ने सुभगते हुए कहा। उसकी जिंदगी ऐसी थी कि अब तो उसने शिकायत करना भी छोड़ दिया था। देवराज ठाकुर के जेल जाने के बाद जब ठाकुर फैमिली पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा, तब शिवांशा और उसके भाई रोहन को राजावत फैमिली की देखरेख में छोड़ दिया गया था। ठाकुर फैमिली जान चुकी थी कि वेद उन्हें नहीं छोड़ेगा, और वही हुआ। राजावत फैमिली को शिवांशा और रोहन की देखभाल करनी थी, लेकिन वहां उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। ऊपर से अंकुश मौका मिलने पर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता था। अरमान, जो मनन के साथ अपनी पढ़ाई के चलते दिल्ली में रहता था, ने एक बार शिवांशा का बुरा हाल देखा। उसने अंकुश को उसे गलत इरादों से देखते हुए पकड़ा, तो वो शिवांशा को अपने साथ दिल्ली ले गया। वहां उसे ज्यादा कुछ नहीं लेकिन पढ़ने का मौका मिला, साथ ही उसे मनन की देखभाल भी करनी पड़ती थी। अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचकर शिवांशा के दिल में टीस सी उठी। तभी उसे अपने पेट में गुड़गुड़ की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपना हाथ पेट पर रख लिया। भूख लगी है, शिवांशा ने धीरे से कहा। उसने पिछले पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था क्योंकि उसका उपवास था। फेरों के बाद भी ही उसे कुछ खाना था। इसके बाद ये सब हो गया तो उसे खाने का वक्त ही नहीं मिला। थकान के मारे वो बाहर आई और सीधे सोफे पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। वेद भी नींद में था, लेकिन अचानक उसने अपना सिर पकड़ा और इरिटेट होकर उठ बैठा। उसने देखा कि शिवांशा सोफे पर सो रही थी और खर्राटे ले रही थी। हाँ, बस अब यही बाकी रह गया था, वेद ने झुंझला कर कहा। उसके लिए एक दिन भी शिवांशा को झेलना मुश्किल हो रहा था। ना जाने वो उसके साथ एक कमरे में कैसे रहने वाला था। वेद उठा और शिवांशा के पास जाकर बोला, उठो, अभी के अभी नींद से जागो। वेद उसे ऑर्डर दे रहा था, लेकिन शिवांशा इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वेद ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शिवांशा को छूने से पहले ही उसने अपना हाथ रोक लिया। ये ऐसे ही स्नोरिंग करती रही तो मेरा दिमाग फट जाएगा, वेद ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा, जो सोते हुए और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। शिवांशा की हालत कोई भी देखे या सुने तो उसे उस पर दया आ जाती थी। वेद ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर एक अजीब सी रिंगटोन बजाई ताकि शिवांशा की नींद टूट जाए, लेकिन वो फिर भी ऐसे सोई थी जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। अब समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे जगाऊं। आगे से कहना पड़ेगा कि इतनी गहरी नींद में ना सोए कि सामने वाला उठाते उठाते पागल हो जाए। खुद आराम से सो रही है और मेरी नींद हराम कर रखी है, वेद ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। आखिरकार मजबूरी में उसे शिवांशा का कंधा झिझोड़ना पड़ा। तभी शिवांशा हड़बड़ाकर उठ बैठी। अचानक उसके मुंह से निकला, नहीं प्लीज छूना मत।
वेद ने देखा कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और चेहरे पर डर के भाव। शिवांशा नींद में बुरा सपना देख रही थी जिसमें अंकुश उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तुम इतनी हैवी ड्रेस में इतना कंफर्टेबल होकर कैसे सो सकती हो, वेद ने हल्की हैरानी जताते हुए पूछा। उसे तो आते ही कपड़े बदलने पड़े थे ताकि वो आराम से सो सके। नींद आ रही थी, ऊपर से मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं थे, शिवांशा ने धीरे से कहा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि अब तो रानी साहिबा की पूरी खातिरदारी करनी पड़ेगी, वेद ने सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा। शिवांशा मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी। उसने तो कुछ मांगा भी नहीं था, फिर भी वेद उसे रानी साहिबा कहकर बुला रहा था और ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे ना जाने उसके कितने नखरे हों। शिवांशा में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो वेद के मुंह पर कुछ बोल सके। उसने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, खुद को राजा साहब की तरह पूरा कंफर्ट चाहिए और उल्टा मुझे सुना रहे हैं। इस तरह मन में मुझे भला बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, जितना हो सके मेरी नज़रों से दूर रहना, क्योंकि जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूँ मुझे अपने माँ बाप का खून से सना चेहरा याद आता है, वेद ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा और कमरे से बाहर चला गया। वो जानता था कि शिवांशा के रहते उसका सोना नामुमकिन था। पहले भी उसे हर पल ये एहसास दिलाया जाता था कि देवराज की वजह से राजावत फैमिली को शिवांशा का बोझ ढोना पड़ रहा है, लेकिन वेद की बातें तो उनसे भी ज्यादा कड़वी थीं। अगर मैं हूं मुसीबत की जड़ तो सब मुझे अपने सिर पर क्यों रखना चाहते हैं, जैसे बाकी फैमिली को मारा वैसे मुझे भी मार देते, कम से कम इतना अपमान तो नहीं सहना पड़ता। क्या मैंने इनके माँ बाप को मारा था या मेरे दादाजी और घर वालों ने सब कुछ मेरे कहने पर किया था, फिर मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, शिवांशा ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। वेद अपने बेडरूम से स्टडी रूम में चला गया। वहां जाकर वो सोने की कोशिश करने लगा। उधर शिवांशा को भी वापस नींद आ गई थी। शाम के लगभग 6 बजे आराध्या नव्यांशी के पास गई। पूरे दिन से वेद और शिवांशा ऊपर ही थे। आराध्या ने नव्यांशी से कहा, क्या हम भाभी से पहली रसोई की रस्म करवाएं? भाई ने किसी भी रस्म के लिए मना किया है। सबसे पहले तो उन्हें भाभी बुलाना ही अजीब लग रहा है। वो हमसे छोटी हैं। मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि भाई को इतनी छोटी लड़की से प्यार हुआ। नव्यांशी ने मुंह बनाकर कहा, तो तुम उन्हें जज कर रही हो? आराध्या ने हल्की हैरानी से पूछा। बिल्कुल नहीं, चलिए भाभी से रस्म कराते हैं, एक खीर ही तो बनानी है, नव्यांशी ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, पर उससे पहले हमें उनके लिए कपड़े भेजने होंगे, वो बिना लगेज के आई थीं। पहली रसोई की रस्म के लिए मैंने माँ की साड़ी पहनी थी, उनके लिए भी लेकर जाऊँ? आराध्या ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, ऐसा करते हैं, उन्हें वो लाल वाली साड़ी दे देते हैं। माँ ने वो साड़ी खास भाई की दुल्हन के लिए तैयार करवाई थी, उनके इमोशंस उससे जुड़े हैं। पहले मुझे लगा था कि भाई कभी शादी नहीं करेंगे, तो वो साड़ी ऐसे ही रखी रह जाएगी, साथ में वो हार भी भिजवा देना, नव्यांशी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। आराध्या ने सारा सामान तैयार किया और उनकी विश्वास पात्र हाउस हेल्पर के हाथों शिवांशा के कमरे में भेज दिया। वेद अभी भी स्टडी रूम में था। दरवाज़ा खटखटाने पर शिवांशा जल्दी से उठकर आई और उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। मैं रानी हूँ, हाउस हेल्पर ने हंसकर कहा। वो लगभग 23-24 साल की थी। उसने शिवांशा के हाथ में सारा सामान देते हुए कहा, छोटी भाभी ने भिजवाया है, बड़ी भाभी, तैयार हो जाइएगा, कुछ ही देर में पहली रसोई की रस्म है। शिवांशा ने सामान लेकर उसे देखा। हाउस हेल्पर अजीब तरीके से हंसते हुए चली गई। उसके जाने के बाद जब शिवांशा ने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अब उसे समझ आया कि वो उसे देखकर क्यों हंस रही थी। सोने की वजह से उसके कपड़े और गहने इधर उधर हो गए थे। शिवांशा ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी वेद कमरे में आया। उसने शिवांशा को उस सामान के साथ देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गईं। शिवांशा आराध्या की भेजी हुई साड़ी को खोलकर देखने वाली थी कि वेद उसके पास आया और उसके हाथ से सामान छीनते हुए बोला, अपने गंदे हाथों से मेरी माँ की साड़ी छूने की कोशिश भी मत करना, तुम इसके लायक नहीं हो। दूसरी बात, तुम मेरी फैमिली से दूर रहोगी, उनके साथ किसी तरह का इमोशनल कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इसी कमरे में कहीं पड़ी रहना। शिवांशा अपनी जगह पर सुन्न हो गई। चौहान फैमिली उसे वेद की पत्नी के तौर पर इतना सम्मान और प्यार दे रही थी, लेकिन इस कमरे की सच्चाई कुछ और थी। वेद कोई मौका नहीं छोड़ रहा था शिवांशा को अपमानित करने का। वो उसके परिवार के एहसान के चलते ही वहां बची हुई थी। वेद ने शिवांशा को भेजा हुआ सामान अलमारी में रख दिया। उधर नीचे सब शिवांशा के आने का इंतजार कर रहे थे। सामान 2 घंटे पहले भेजा गया था, लेकिन शिवांशा अभी तक नीचे नहीं आई थी। वो ऊपर अपने कमरे में उसी शादी के जोड़े में आंसू बहा रही थी। अब आगे क्या मोड़ लेगा यह रिश्ता? क्या वेद को कभी शिवांशा की मासूमियत दिखाई देगी, या सचमुच उसकी किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है? पढ़कर अपनी समीक्षा जरूर दीजिएगा।